ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब से ओम मंडली खुली हैदराबाद सिंध में, तो उनका नाम कोई ऑफिशियल नाम नहीं रखा हुआ था उस समय, क्योंकि शिव बाबा की गुप्त में प्रवेशता हो रही थी ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा जैसे कि ज्ञान के गर्भ में था, ब्रह्मा को भी पता नहीं था, ब्रह्मा नाम भी नहीं था, दादा लेखराज था, परंतु दादा लेखराज के तन में गुप्त गुप्त परमात्मा की प्रवेशता होने लगी और बाबा के नजरों से अनेक आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार होते थे। बाबा ओम की धुनी लगाते थे, बच्चे सुनते हैं और ध्यान में चले जाते हैं, घर बैठे भी दिव्य साक्षात्कार शुरू हो गए। खुद बाबा को ही पता नहीं लगा ये क्या हो रहा है, परंतु बाबा को भक्ति का फल परमात्मा ने दिया। आधा कलब का भक्त पक्का, बड़ा पुराना भक्त, कैसे भक्ति का फल डायरेक्ट परमात्मा ने इसको दिया। उनको दिव्य साक्षात्कार करा के उनको पहले नाम दादा लेखराज लौकिक, फिर कैसे ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बन गया। ब्रह्मा विष्णु कैसे बना, ये तो विचित्र कहानी है इस आत्मा की। हमने प्रैक्टिकल में बाबा को देखा कि वो क्या से क्या हो गया। मैं आपको बाबा की लौकिक जीवन कहानी भी थोड़ी जरूर बताना चाहूंगी कि आप लोगों को पता लगे। जैसे कोई राजा होता है ना, उसकी राजाई चली भी जाती है, राजभाग चला जाता है, परंतु उनके संस्कार में जो रॉयल्टी होती है वो नहीं जाती है। उनका जो महल में रहन सहन होता है वो बिल्कुल अपने ठाट से ही चलता है, क्योंकि उनके खून में रॉयल्टी आ गई। बचपन से लेके राजाई घराने में पला बड़ा हुआ, पढ़ाई उसी प्रकार से, फिर परिवार का संबंध फंक्शन सब उस प्रकार से। तो हमने देखा बाबा ब्रह्मा की आत्मा कैसे तैयार थी, जैसे थी नहीं तैयार। दादा लेखराज मेरे घर के सामने बाबा का घर था, परिवार सब मेरे सामने, सब मैंने अपने आंखों से देखा। परंतु बाबा के लौकिक जीवन में भी काफी अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, जिनको हम बाद में जैसे जैसे देखते गए सुनते गए, तो हमने देखा कि यानी इस आत्मा का क्या इतना विशेष पार्ट रहा, जो सेकंड में क्या से क्या बन गया। परंतु जो क्या था ना, वो भी एक विचित्रता थी उनके जीवन में। बाबा के संस्कार में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। क्यों, मैं सोचती हूँ क्यों ऐसी सब बातें अच्छी थी, कारण क्या? क्योंकि ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाली ऊंचे से ऊंची आत्मा, साकारी आत्मा ऊंचे से ऊंची, फिर चक्कर लगाती लगाती जब वो नीचे आती है लास्ट जन्म, तो लास्ट जन्म में राजा ही चली गई, वो भाग्य भी चला गया, वो पाठ भी पूरा हो गया, लेकिन उस आत्मा में छिपे हुए संस्कार थे जिनकी सारे शहर में महिमा होती थी। खुद उसको भी पता नहीं ये क्यों ऐसा है, और हम देखने वालों को भी ऐसे आकर्षण होती थी बाबा के संस्कारों की, चेहरे से, रॉयल्टी से। कुछ कुछ लोगों के मुख से अच्छे अच्छे वचन निकलते थे, परंतु ये मालूम नहीं था कि ये वो ही आत्मा है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। फिर दूसरी बात, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का इतना गहरा कनेक्शन, वो निराकार सर्वशक्तिमान बाप, सभी गुणों का सागर दाता, सारे विश्व का परिवर्तक, उसने कैसे इसको अपना बना? साकार कोई ब्रह्मा था तो रही। दादा लेखराज अहमदाबाद सिंध में कलकत्ते में ज्वेलर था और परिवार में अपने 5 बच्चों का बाप था। घर गृहस्थ में बहुत रमा हुआ था, परिवार में मोह भी पूरा था, परिवार से प्यार भी पूरा था, पर संस्कार इतने अच्छे थे जो बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी क्रोध नहीं किया। किसी ने देखा ही नहीं क्रोध क्या होता है। घर वालों से हम पूछते हैं, बाबा ने कभी गुस्से में आके आपको कुछ कहा? बच्चों से पूछते हैं, बाबा ने कभी ऐसा किया? कोई भी नहीं कहता है कि बाबा ने कभी ऐसा किया। बाबा ने कभी गुस्सा किया? कभी नहीं कोई बोलता। खुद बाबा की धर्म पत्नी जो साथ में रहती वो भी कहती है, बाबा ने गुस्सा कभी नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण वाले ऊंचे से ऊंचे निर्मल आत्मा, शीतल सतो प्रधान, वो लास्ट जन्म में आती है तो संस्कारों की छाप लगी हुई है, तो गुस्सा नहीं करना। दूसरे बाबा के अंदर में एक विशेषता घर वाले बताते थे कि कभी हंसी कुड़ी में कोई शब्द ऐसा कह दिया किसी रिश्तेदार को, और उस समय वो थोड़ा सा पंक हुआ, थोड़ा चेहरे पर आ गया, तो बाबा फौरन अपने आप को पश्चाताप करने के लिए व्रत रख लेता था कि आज मैं ये भोजन नहीं पान करूंगा। फिर घर वाले बहुत प्यार से मनाते थे कि बाबा हमको ऐसा फील नहीं हुआ, बाबा आप भोजन पान करो, बाबा हमको नहीं ऐसा फील हुआ। बाबा कहते, नहीं बच्चे, मैंने फील किया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा भी शब्द मैंने क्यों बोला। और इतना महीन पुरुषार्थ एक मनुष्य होकर के उस समय में करे, ये भी एक बाबा की महानता थी। फिर बाबा का कन्याओं माताओं के लिए बहुत प्यार था। हमारे सिंध में जिस सेठ के घर में 3 कुमारियां हैं और चौथी आ गई, बस मुसीबत आ गई। वो तो उल्टा मंजा डाल के सो जाएगा कि अब ये पीरा कहां से टलेंगी, कैसे मरे तो मेरी जान छूटे, मैं कहां तक शादियों में इतना इतना खर्चा करता रहूंगा। पहले ही चिंता, अभी बिचारी जन्म लिया है तो जन्मते ही उसको मारने का संकल्प आएगा, इससे तो मर जाए तो अच्छा। परंतु बाबा की जीवन की ये विशेषता, जितनी कन्या बाबा के घर में आए, बाबा दिल से उनका सत्कार करते थे कि नहीं, ये शक्ति अपना भाग्य अपने साथ में लेके आई है, मैं कौन हूं खिलाने वाला, मैं कौन हूं खिलाने वाला। एकदम से तो बाबा को ये रहता था कि कन्या का भाग्य कन्या के साथ है, माता पिता वो मान रखते हैं कि मैं खिलाने वाला हूं। अरे इसके भाग्य तो तेरे पास आया है धन, तुम क्यों समझते हो तेरे भाग्य से आया है? तेरे घर में कन्या आई है, उनके भाग्य से तेरे पास आया है, ये उनका अधिकार है। तो इसमें भी मैंने देखा कन्याओं के लिए बाबा के दिन में सत्कार, और नारी के लिए कभी बाबा ने नारी के मन को दुखाया नहीं होगा, तिरस्कार नहीं किया होगा। कोई बात बाबा जसोता की टाल देवे, जसोता बाबा की धर्म पत्नी, उनकी बात को बाबा ऐसे कर दे, ठोकर मार दे, या उसका कभी अकुल निकाले, क्या तुम्हारा अकुल है, क्या तुम कहती हो, या बाबा कहे नहीं नहीं ये बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है, कभी भी बाबा ने ऐसे नहीं किया। बाबा सदा उनकी बात सुनते थे और रखते थे, और चाहते थे कि जो बात ये कहे वो ही होनी चाहिए, क्योंकि नारी के दिल को दुखाना माना घर को नरक बनाना। ऐसी ऊंची भावना, नारी के दिल को दुखाना माना घर को नरक बनाना, ये बाबा कभी भी नारी के दिल को नहीं दुखाते थे। और बाबा के घर में जो बहू आती थी तो बाबा उनका भी दिल से सत्कार करते थे कि ये बहू नहीं है, ये घर की मालिक है, ऊंची दृष्टि से बाबा उनको देखते थे। और जब वो शादी करके आती हैं, बड़े बड़े घरों की, टॉप वाले घराने की बच्चियां बाबा के घर में आई हैं, क्योंकि लोग बाबा के संस्कारों को जानते थे, कि लखीराज बाबू दिल का बहुत बड़ा है, दाता है दिल का, और भक्ति मार्ग में बहुत अच्छा है, भावना वाला व्यक्ति है, इसके घर में हमारी बच्ची जाएगी, सुखी हो जाएगी। तो विनाशी धन में भले ही बाबा पैसे में उनके भेंट में कम होगा, लेकिन वो बाबा के चरित्र को देख करके अपनी बच्ची देना चाहेगा। तो जब बाबा के घर में वो बच्ची शादी करके आती है, तो पहले दूसरे दिन बाबा को ऐसे पांव पड़ने आती है ना बुआ, तो बाबा कहेंगे बेटी तुम्हारा हाथ सदा ऐसा रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मना घड़ी घड़ी मांगना, पियर घर में जाना ये चाहिए, उधर घर जाना ये चाहिए, चाहिए चाहिए को हमारे सिंधी में शब्द है खपे खपे के दे कपे, तो सजो जग तुम्हें तो खे जपे, किसने याद किया, मानो तुम चाहिए चाहिए को काट लो तब जग तुम्हारी पूजा करेगा, इसका अर्थ ये है। तो कभी भी बहुओं को कहेगा कि तुम अभी तुम मेरे पास आ गई, बस तुमको जो पेरेंट्स को देना था सो तुमको दिया, तुमको उनसे कभी भी मांगना नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या, ये लौकिक संस्कार। और दिल के बहुत बड़े, राजाओं के घर में राजाओं के पास जाना आना, रॉयल संस्कार, रॉयल पार्टी बाबा को मिलती थी, तो बाबा का दिल इतना बड़ा रहता था, ज्वेलर था राजाओं के भेंट में, ज्वेलर क्या है, परंतु बाबा समझता मैं तो फिर भी बाबा ने मुझे ज्वेलर बनाया है, मैं राजाओं को कुछ देता हूं, मैं लेता नहीं हूं। तो जब उनके बच्चों की शादी होती थी तो बाबा बहुत सुंदर ज्वेलरी बना के उनके बच्चों को प्रेजेंट करते थे, तो राजा देखते थे, कहते थे लखीराज बाबू भगवान से एक भूल हो गई है। कौन सी भूल हो गई है? कि भगवान ने राजा तो हमको बनाया है परंतु दाता तुमको बनाया है, तुम्हारे इतने बड़े संस्कार, ये गिफ्ट हमको देनी चाहिए आप लोगों के बच्चों को, लेकिन आप हमारे बच्चों को आप देते हो। लखीराज बाबू आपकी दिल बहुत बड़ी है। फिर मैंने देखा कि कई बार बाबा की कहानियां तो सुनते थे ना, तो मेरा शौक होता था भगवान के चरित्र सुनने और सुनाने का, एक जिगरी। तो जब भी हमारे को बाबा की धर्मपत्नी या बाबा की बहू, बाबा की बेटी, कोई भी ऐसी बाबा के बारे में बात सुनाएगी ना, तो मैं जैसी चात्रक होकर सुनती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्यों मैंने बाबा को अपने आंखों से लौकिक जीवन में देखा और लौकिक जीवन की सब बातें मुझे पहले ही जचती थी अंदर ही अंदर। इतना तो मैं बच्ची थी 12 साल की, मैं इतनी तो बुद्धि थी नहीं, पर क्यों अच्छी लगती थी, जैसे उनके हर बात पे मेरा ध्यान चला जाता था, जो काम बाबा करता था उस पर मेरा ध्यान जरूर जाता था, घर वाले जो ऐसी बात बताते थे वो मेरे दिमाग में छप जाती थी। तो घर वाले कभी कभी बताते थे कि बाबा के सच्चाई के संस्कार इतने अच्छे थे, बचपन से लेकर के बाबा ने अपने लौकिक परिवार के अंदर एक सत्यता की छाप छोड़ी हुई थी। सब बच्चों को मालूम है बाबा को झूठ जरा पसंद नहीं आएगा, कोई भी झूठ बोलेगा ना नौकर चाकर, तो नौकर चाकर को भी अंदर रहेगा कि उनकी शिक्षा है तुमको सच बोलना है, तुम्हें जो चाहिए वो भले मेरे से लो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको चोरी नहीं करनी। इसलिए बाबा ने अपने संस्कार में अपने नौकरों को डाला हुआ था। तो दुकान के अंदर बाबा का एक पुराना नौकर था जो बहुत अनिष्ट था, उसको भी पता था और बाबा को भी पता था, कभी उनके बच्ची की शादी हुई, कभी कोई घर में जज काज हुआ, उनको थोड़ी भी पैसे की जरूरत होगी ना, बाबा सामने से दे ले लेगा, बच्चे अभी तुम्हारे घर में ये मौका आने वाला, तुम ख्याल नहीं करना, बाबा बैठे है, उसकी दिल लेकर के उनका भंडार भरपूर कर देता था कि तुम्हारे सामने ये जज काज आया है, तुम चिंता नहीं करना, बाबा बैठा है। था तो वो सर्वेंट, परंतु बाबा जानता था कि ये अनिष्ट सर्वेंट है, अनिष्ट का तो बहुत बड़ा वैल्यू है, ये मेरे पास अनिष्ट से काम करे तो इनके भेंट में पैसा क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ, बाबा कुछ राजा बाबा के पास आए थे, तो बाबा उनमें बिजी था उनको ज्वेलरी दिखाने करने में, तो कुछ पुड़िया निकाल करके, हीरे जवाहरात की पुड़िया निकाल करके ना उनको दिखा दिखा करके एक साइड में रख दी थी। फिर राजाओं से उठना होता है, सलाम करना होता है, भेजना होता है, तो बाबा ऐसे उठ करके चले गए अपने ऊपर रूम में, बाबा भूल गए। कुछ समय के बाद उनके जो नौकर थे ना, उनके बच्चे वहां आए थे खेलने कूदने, तो बच्चों को वैल्यू का तो पता होता नहीं है, सिर्फ देखते चमकीली चमकीली छोटी छोटी चीजें है, बाबा दिखाता रहता है, क्या वैल्यू है वो भी पूरा पता नहीं, पर दिल होती है वो हीरे लगाते हैं, इसमें लगाते हैं उसमें लगाते हैं, तो उनको भी कुछ अंदर में दिल होंगे हम भी कुछ ऐसी पहने, तो वो पुड़िया दो उठा करके चले गए। तो जब बाबा कुछ समय के बाद आया तो पुड़िया गिनती की तो 13 में से 2 कम है, उसमें कुछ कुछ हीरे थे। तो बाबा ने, बाबा का किसी में भी ध्यान नहीं गया कि इसने किया होगा, इसने अनुमान लगाना भी पाप, ये भी धारणा, शक लगाना किसी गरीब के ऊपर, शक लगाया कि इसने ऐसा किया होगा, ऐसा भी बाबा कभी नहीं सोचता था। परंतु पूछा सर से बुला करके कि कौन कौन दुकान पर आए थे, मेरे पीछे कौन कौन आए थे, किस किस के रिश्तेदार आए, या कौन कौन देखने के लिए आए थे, या कोई ऐसे आए हो ग्राहक, तो सभी ने कहा बाबा आप तो बिजी थे, आपके पीछे तो कोई आया ही नहीं। बाबा ने कहा नहीं कुछ तो है बात, ये 13 पुड़िया थी इसमें से 2 कम है, तो वो कहाँ चली गई। तो नौकर से पूछा तो नौकर ने कहा बाबा मुझे मालूम नहीं, मैंने देखी भी नहीं है पर मालूम भी नहीं है। तो बाबा ने पूछा कोई बीच में आए थे यहाँ, कहा नहीं बाबा और तो कोई नहीं, पर मेरे बच्चे 2 आए थे। तो बाबा झट समझ गया, कहा फिर हो सकता है बच्चे ना, बच्चों को क्या पता, बच्चों ने एक छोटी छोटी चीज समचप के लिए देख करके उठा लिया होगा, ये हो सकता है। तो नौकर ने कहा ऐसे बाबा ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मेरे बच्चों ने उठाया होगा, उसको लगा ये तो सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। वो तो घबरा गया, बाबा ने कहा तुमको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमको जानता हूँ, तुम इतने साल मेरे पास रहे हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तेरा काम नहीं, ये बच्चे है, बचपन का काम है बस। बाबा ने क्या क्या उसी समय कार उठाई और बच्चों के लिए खिलौने के बॉक्स ले लिए 2 अच्छे, लेकर के उनके घर में चले गए। ये यही नौकर यही बैठा है, बाबा खुद ही चले गए और जाके उनको बुलाया, बच्चों आओ इधर, प्यार दिया उनको, प्यार दे करके उनको मिठाई का बॉक्स दे दिया, उसको भी दिया उसको भी दिया। ऐसे बुला करके छोटे से पूछा बच्चे तुम आए थे ना दुकान पर, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसे भोलापन तो होता ही है, तो तुमने जो पुड़िया है उसमें से कितनी पुड़िया उठाई। तो उसने कहा मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं उठाई। तो किसने उठाई, मेरे बड़े भाई ने उठाई। कितनी उठाई, कहा 2 थी उसके हाथ में। अच्छा फिर उसने कहाँ रखी, कहा कि बाबा ऐसे वो है ना वेंटिलेटर इसके ऊपर उन्होंने फेंक दिया। वैल्यू का तो उनको पता नहीं था क्या चीज है। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर तुम्हारा भाई कहाँ है, फिर उसको बुलाया, फिर उनको भी टोली का बाक्स देके, पहले तो टोली खिला के मुख मीठा कर दिया। अब जब मुख में मिठाई आ गई, प्यार मिला, तो दिल सच्ची हो गई। तो उसने भी कहा हाँ बाबा मैंने ऐसा फेंक दिया। बाबा ने कहा तुम उतार सकते हो, कहता हाँ टेबल बड़ा चाहिए तो फिर मैं उतार सकता हूँ। फिर 1-2 के ऊपर चढ़ करके मतलब उतार करके दे दिया बाबा को, जैसे कि तैसी। तो बाबा ने पूछा तुमको कुछ चाहिए, कोई अंदर में आशा है, तो कहा हाँ हमको मुंदरी चाहिए। अच्छा अच्छा बाबा है ना, बाबा तुमको दे देंगे, बना करके दे देना। फिर बाबा ने सचमुच उनकी आश पूरी कर दी और प्यार दिया, मिठाई दी, और उसने बाबा के सामने बिल्कुल सच बोला। नौकर तो समझ नहीं सके कि बाबा में ये क्या करामत है, कैसे बाबा ने उसे सच बुलवा दिया। और मैं अगर पूछता तो डर के मारे मेरे को गुस्सा भी आता, तो मैं 2-4 थप्पड़ भी लगा लेता, फिर पूछ भी लेता कि बताओ क्या है, थप्पड़ भी मारता जाता, सच भी बुलवाता रहता, इसलिए मेरा सच कभी सिद्ध ही नहीं होता था। मार से तो बाकी भी डरेंगे बच्चे। पर बाबा ने उनसे सच बुला दिया। तो सच्चाई का संस्कार था। सत्य नारायण, हम कहते हैं कैसे नरसिंह सत्य नारायण बनता है, तो सत्यता के संस्कार भरे हुए कुटे कुटे। बच्चों को भी कहेगा झूठ कोई भी बोलेगा तो बाबा को झूठ बोलने वाला बच्चा और रोने वाला बच्चा बिल्कुल लौकिक में भी पसंद नहीं आता था। तो बाबा ने एक बार छोटी बच्ची थी बाबा की निर्मल शांता, वो अपनी कहानी सुनाती है। जो बाबा की बच्ची आई हुई है और परसों तो यहाँ बैठी थी, यहाँ सभा में फिर कभी देखेंगे, सम्मान समारोह होगा उसमें आप देखेंगे। अभी तो ओल्ड एज में है, थोड़ा बोलने में होता है उसको, अभी तो सभा में नहीं इतना बिठाते हैं, परंतु दर्शन तो आप सबको होगा। तो उसने बताया कि जब हम 7-8 साल के बच्चे थे या 6 साल के बच्चे होंगे, तो हमारे घर में ब्राह्मण आता था, तो ब्राह्मण को हमारे मम्मी डैडी खिला करके सोना भी दे देते थे, खाना भी खिला देते थे, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी दे देते थे। तो हमने देखा कि मम्मी डैडी सोना भी देते हैं, चांदी भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, कपड़ा भी देते हैं, सब देते हैं। तो आपस में बात करेंगे, सोना दान करने से सत्य गोविंदो नहीं कहेंगे, अगले जन्म में राजा बनेंगे। इस बच्ची ने सुना कि अगले जन्म में सोना दान करने से राजा रानी बनेंगे, तो इसने सोचा मम्मी और डैडी वो तो राजा रानी बन जाएंगे तो हम क्या बनेंगे। तो वो ब्राह्मण आया था, धामा खा करके चला गया। तो जब धामा खा करके चला गया तो उसने क्या देखा कि ब्राह्मण जा रहा है, तो पीछे पीछे गई, कहता थोड़ा ठहरो, ऐसे करके अपने सोने की चूड़ियां उतार करके उसको दे दी। उसने कहा बेटी ऐसे नहीं होता है, तुम जाओ, तुमने अपनी मम्मी से पूछा? तो कहा ना वो तो मेरी चूड़ियां है ना। कहा नहीं, तुम छोटी बच्ची हो ना, तुम जाओ तो अपने मम्मी डैडी से पूछ के फिर मैं तुम्हारे से लूंगा। कहा नहीं, मैंने तो मन में दान किया हुआ है ना, तो दान किया तो वापस मेरे को कैसे देंगे, ये मैंने अंदर से दान किया ही, ले जाओ। वो माने नहीं बाल की। तो ब्राह्मण ने कहा चलो घूम घाम करके फिर मैं आके इसके माँ को सुनाता, नहीं तो ब्राह्मण के ऊपर दोष आएंगे ना, सगीर बच्ची ने चूड़ियां उतार करके दे दी और तू कैसे लेके गई। तो वो भी बेचारा राइट था। फिर घूम घाम करके आया तो माँ को बताया, तो माँ ने चूड़ियां ली शायद पहले, उसने दे दी उसने को वापस है। और जसोता के मन में था तो दान किया हुआ हम रखेंगे तो नहीं, परंतु इस बात को थोड़ा सिद्ध करके बच्ची को समझा के बाबा तक बात पहुंचाएंगे, पीछे हम दे देंगे। तो वो दे के गया, उसने रख लिया। फिर बच्ची को बुला के पूछा तो तुम्हारी चूड़ियां कहाँ है? तो झूठ बोलने का संस्कार तो था नहीं, ऐसे चिप करके खड़ी हो गई। बोलो बेटी क्या गुम हो गया, कहाँ गई? फिर चुप, नहीं बता बता, किसको देके आई हो, कोई सखी को सहेली को देके आई हो? कहती नहीं। किसको दिया? कहते मम्मी मैं ब्राह्मण आया था ना, उसने खाना खाना मैंने उसके बाद उसको दे दिया। कहा तुमने सोने की चूड़ियां दे दी, तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी कमाई की थोड़ी है, पैसे कमाई के पैसे थोड़ी है, ये तो माँ बाप ने कमाया उसका पैसे का दान करती हो तुम। तुम छोटी हो, तुमको थोड़ी अभी दान करना चाहिए। उसको समझाने के लिए समझा दिया, नहीं तो आगे के लिए पता नहीं और क्या करेगी। तो उसने कहा मम्मी तुम लोग कहते ना सोना दान करने से भविष्य में राजा रानी बनेंगे, तो मेरे को या मम्मी भी राजा रानी बनेगी, बाबा भी बनेगा, तो हम क्या बनेंगे? तो मैंने भी अपने तरफ से अपना चूड़ा दे दिया, दूसरे का थोड़ी मैंने अपना दे दिया। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, बच्ची ने दान किया माना दान हो गया। ब्राह्मण को बुला के प्यार से कहा तुमने ठीक बताया, बताना तुम्हारा फर्ज है क्योंकि बच्ची छोटी है, परंतु अभी तुमको दे दिया है तो अभी हम ये वापस नहीं लेंगे, दान किया हुआ वापस नहीं लिया जाता। ऐसे करके बाबा ने उसको वापस दे दिया। बच्ची को समझा दिया कि तुम कोई भी कमाई करेंगी ना तो तुम्हारा अधिकार रहता है, तुम्हारे खून की कमाई तुम अपने हाथ से कितनी भी दान करो, परंतु तुम अभी माता पिता के अंदर हो तो माता पिता तुम सबके तरफ से दान करते हैं, हम उतना दान करते तुम सब बच्चों के तरफ से हम दान कर देते हैं, तुम्हारे नाम से भी करेंगे, आगे के लिए तुम्हारे हाथों से कराएंगे ताकि बच्चों का मन खुश हो जाए। मैं देखती हूँ यह माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले आती हैं। भारत में तो दान का इनका संस्कार होता है, तो मैं देखती छोटे छोटे बच्चों को खुद के हाथ में भी लिफाफा होता है और बच्चे के हाथ में भी लिफाफा दे देती है कि जाओ दादी बैठी है ना, तुम जाओ जाके दादी के आगे रखो और दादी से दृष्टि लेना, दादी को ओम शांति कहना, फिर दादी से प्रसाद लेके आना। तो माँ संस्कार डालती है और बच्चों में जो बचपन से पड़ जाते हैं तो बड़े होने के बाद उनके संस्कार चालू हो जाते हैं, दान धर्म के चालू हो जाते हैं। तो बाबा ने बचपन में ही अपने सारे परिवार के अंदर दान के, धर्म के और नित्य न्याय के गीत बना करके बाबा उसका तर्ज निकाल करके, उन कोई कहेगा तर्ज निकाल, जो अच्छी तरह से गीत लिख करके आएगा उनको बाबा रोज एक रुपया इनाम देगा। लालच दे देते थे, एक रुपया उस समय में बहुत कीमती होता था, अभी तो कोई 100 रुपए की नोट की कीमत नहीं है। फिर उनको एक एक रुपया मिलता, बच्चे खुश होकर के नया नया गीत, फिल्मी गीत, उन अच्छे अच्छे अक्षर जर करके फिर बाबा के आगे भजन बना के गाते थे। ये संस्कार डाला, सत्संग में ले जाने का सत्संग, गुरुओं में भी बाबा का अटूट विश्वास रहता, गुरु जो कहेगा ना वो बाबा कहेंगे। गुरु का हुक्म माना काल का हुक्म। एक बार की कहानी उसकी धर्मपत्नी और बहू बताती है। तो बड़े घर की थी बहू, करोड़पति घर की थी, हैदराबाद सिंध में सबसे पैसे वाला, बड़े पैसे वाला उसका घर था। दादी बाबा की जो बड़ी बहू थी मानो बिरजदरा दादी थी, तो वो जो बहू बाबा के घर में आई तो उनके संस्कार तो थे ही अच्छे, और पहले ही बाबा कह देता था कि बच्ची तुम ऐसे मांगना नहीं, ये नहीं करना, उनके संस्कार बाबा ने अपने तरफ से डाल दिए थे। फिर वो जो बिरजदरा दादी थी वो जब भी बाबा के घर में आती थी ना तो जैसे कि वहां की लौकिकता, लौकिक घर की सब छोड़ करके बाबा के पास आई। अब बाबा जो कहे जैसा कहे, चलिए बाबा को बहुत उस रूप में मानती थी कि बाबा पता नहीं कौन है, इतना प्यार बाबा के साथ, जो बाबा जो कहे ना उस मानने के लिए तैयार हो जाती थी। तो उस समय बाबा टॉप वाला ज्वेलर था बहुत बड़ा, तो उस समय में बाबा के घर में कोई प्रसंग चल रहा था, भूल गई बात करते करते, हाँ नहीं कोई किस्सा था उसके, तो बाबा को यानी संस्कार वैसा था। हाँ, उसके घर में पहला पुत्र हुआ, बहू को समझो, बाबा को पहला पोता हुआ। तो जब पहला पोता हुआ तो उसके घर में तो बहुत बड़ा श्राद्ध बना हुआ पड़ा था, बाबा के घर में खूब तैयारियां हुई पड़ी है, समझो अगले दिन होने वाला है या परसों दिन है, तो उनकी सारी तैयारियां, पहले मिठाइयां बनाना, ये करना, ऑर्डर देना, बड़े धूमधाम से मनाना था। तो इतने में बाबा को अपने गुरु से मुंबई से टेलीग्राम आ गए, तो मुंबई से टेलीग्राम आई तो आप जल्दी पहुंच जाओ। तो बाबा ने फटाफट अटैची ली, टाइम पूछा, टाइम क्या है, तो बस बाकी एक दो घंटा है स्टेशन तक पहुंचने में, फिर ट्रेन चली जाएगी। बाबा अटैची लेके चल पड़ा। घर वालों ने कहा बाबा आप कहाँ जाते हो? बाबा ने कहा गुरु जी की टेलीग्राम आई है ना। उन्होंने जसुका ने कहा बाबा गुरु जी की टेलीग्राम आई है, पर यहाँ तो घर में इतना बड़ा जज काज होने वाला है, सब रिश्तेदार आएंगे, पार्टी बहुत उनको फीकी लगेंगी, सबका उलहना सुनना पड़ेगा, तो बाबा आप मेहरबानी करके आज का दिन छोड़ दो। बाबा ने कहा जसोता तुम क्या बोलते हो? गुरु का हुक्म माना काल का हुक्म। क्या मैं काल को कह सकता हूँ थोड़ा ठहरो, आज मेरे पोतरे का दिन है या फलाना है? जब मैं काल को नहीं कह सकता हूँ तो मैं कैसे उनको कह सकता हूँ? तो नहीं, मुझे जाने दो, मैं गुरु के पास पहुंचूंगा, काम होते ही मैं फौरन आ जाऊंगा। अब गुरु के पास कुछ और तो काम था नहीं बाबा में, पर बाबा गुरु का अन्य चेला था, तो गुरु को कोई मंदिर बनाना था, मंदिर के लिए पैसा बहुत चाहिए था, तो पहला ग्राहक बाबा ही नजर में आया उसको, इसलिए पहले पहले उसने बाबा को बुलाया और बाबा ने वहां गया, उनको पैसा दिया और फटाफट बाबा आ गए। फिर लौकिक रिश्तेदारों ने बहुत बाबा को मीठा मीठा ओलाना दिया, लखीराज बाबू पार्टी फीकी फीकी, आपने हमको निमंत्रण दिया और आप चली गई, पहला पोता, लखीराज बाबू आपने ये क्या किया? बाबा ने कहा देखो मेरी ये भावना है, कि मेरे गुरु ने बुलाया, माना काल का बुला हुआ, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। परिवीति भावना, कभी कोई गुरु की बात को टाला नहीं। आज बाबा हम लोगों को कहते श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, कोई भी ऐसा काम नहीं करो, क्योंकि बाबा को पता है श्रीमत पर चलने वाले को क्या मिलता है और जो श्रीमत में मन मत को मिस करते उसकी क्या हालत होती है। जो नहीं जानती है, जो निश्चय नहीं करते वो तो भूले करते ही रहेंगे, पर उसकी गति क्या होंगी वो बाबा बताता है। छोड़ता फिर भी नहीं है बच्चों को, कि बच्चों से कोई ऐसी भूल ना हो जाए, भगवान के बच्चे बनकर के फिर कोई ऐसी भूल करे। आज का ना तो कई बच्चे ऐसे छिप छिप करके यहाँ भी बैठे हुए होंगे, या ऐसे आके बैठते हैं, तो क्या है अगर समझो विकारों में गिरते भी रहते हैं और ज्ञान में भी चलते रहते हैं, तो मानो भगवान को ठगते हैं। अब भगवान को तो कोई ठग नहीं सकता है ना, तो वो खुद को ठगते, तकदीर को लकीर लगा लेते हैं, और उसकी क्या हालत होती है वो आप जानते हो, हम भी सब जानते हैं। परंतु जब ज्ञान का नेत्र खुल जाता है ना, मैंने तो बाबा को देखा, एक सेकंड में बाबा बदल ही गया। ये तो लौकिक में संस्कार अच्छे थे, फिर अलौकिक में हुआ तो हमको लखीराज बाबू नजर ही नहीं आता था, उनकी कोई चाल ढाल कोई एक्टिविटी ऐसी नजर नहीं आती थी। हम जितनी भी पुरानी बहनें हैं जिनको आज दादियां कहा जाता है, इन सभी दादों का ये अनुभव है कि उसने कभी भी दादा को दादा लेखराज के रूप से नहीं देखा। मेरा तो घर सामने था इसलिए मैंने थोड़ा छोटी आयु में देख लिया, परंतु उन्होंने बाबा को बाबा के पास आते ही भगवान का अनुभव किया, ज्ञान का नेत्र खुल गया, दिव्य साक्षात्कार हुआ, और बस वो बाबा ब्रह्मा को एकदम से उस रूप में देखते थे, या मेरे सामने कृष्ण खड़ा है या फरिश्ता खड़ा है, या तो देखेंगे बाबा ब्रह्मा बिल्कुल फरिश्ते के रूप में खड़ा है, या तो देखेंगे कृष्ण के रूप में खड़ा है। घर में जाएंगे तो बिल्कुल नींद नहीं आएंगे, सारा टाइम बाबा की सूरत मूरत घूमती रहेंगी, बाबा का हर बोल असर करता था। बाबा सिर्फ कहेंगे आओ मीठी बच्ची, बस मीठी बच्ची कही तो दादी ने कहा ना बाबा ने मुझ में क्या देखा जो मुझे चुन लिया। गीता है ना एक, मुझ में ना जाने क्या उसने देखा, और हम भी अपने से पूछते हमने ना जाने क्या उसमें देखा। दादा लेखराज तो वही था सिंध में, पहले भी था, कोई नई बात तो नहीं थी ना, शादियां कराई, सत्संग होता, उनके पास उच्च कोटि के महात्मा लोग आते थे, तब भी हम बाबा के पास जाते थे बचपन में। परंतु जो चेंज देखी वो तो वंडरफुल चेंज देखी, मनुष्य बाबा दिखाई नहीं पड़ता था, दिव्यता की मूर्त, चलना फिरना जैसे कोई फरिश्ता जा रहा है, दृष्टि में रूहानित, सदा रूहानित, क्योंकि गुप्त प्रविष्टा है, तो ऐसी रूहानित है जिनको देखें तो वंडर खाए ये कैसे क्या हो गया। तो बाबा ने जैसे ही शिव बाबा ने उसको जगाया तो शिव बाबा करण करावन हार, वंडरफुल बात, वो निराकार और वो साकार, पर निराकार ने साकार में प्रवेश करके साकार को अपना बना लिया, बस वो उसका हो गया। फिर बच्चों के बीच में रहते, स्त्री के बीच में रहते, स्त्री को भान नहीं आता था ये मेरा पति है। बड़ी वंडरफुल बात है, अभी आप सब घर ग्रस्त में रहने वाले भाई भी मेरे सामने हैं, आप अपने घर में जाते हो स्त्री आपको किस रूप से देखती है, भले देवी रूप से देखती है लेकिन फिर भी भान तो थोड़ा रहता ही है ना। लेकिन बाबा की धर्म पत्नी को बाबा का भान ही नहीं रहता था, वो ऐसी समझती है कि बस बाबा तो मेरे सामने भगवान खड़ा है, बाबा भगवान हो गया, बाबा भगवान हो गया है, ये मालूम नहीं पड़ता था कि शिव बाबा प्रवेश हुआ है। इसके कारण हमको ऐसा लगता है ये ज्ञान बाद में खुला है, पहले परिवर्तन देख रहे हैं, चमत्कार चमत्कार। जसोतम बाबा के घर में खाना लेके जाती है बाबा के लिए विधि पूर्वक, चांदी के बर्तन में ठीक ढंग से विधि पूर्वक भोजन ले जाती है खिलाने के लिए, पर जब जाती है तो बाबा है ही नहीं और कृष्ण छोटा सा है, वो खेल रहा है, ऐसे ऐसे करके देखती है क्या हो रहा है मेरे को। फिर दो मिनट के बाद देखती तो बाबा एक फरिश्ते के रूप में बिखरा है, फिर ऐसे करके देखती है, फिर ऐसे देखती है, मूंझ जाती है, जाके अपने बहू को बोलती है कि मैं नहीं बाबा को खिला सकती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, बाबा बदल जाता है, कभी कृष्ण आ जाता है, कभी फिश्ता आ जाता है, मैं तो देखती नहीं हूँ मैं किसको भोजन खिलाऊं। तो बहू भी बाबा को जसोदा को कहती है, मम्मी तुम तो अपनी बात कहती हो पर मैं अपनी बात सुनाती हूँ, मम्मी मेरे को भी ऐसे दिव्य साक्षात्कार होता है, ये कोई विशेष भगवान का जादू है जो बाबा हमको उस रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाबा के घर में ये लीला चालू हो गई दिव्य दृष्टि की, घर वालों के जीवन में तभी परिवर्तन आया, नहीं तो घर वाले जल्दी थोड़ी मानते हैं। आप चलते हो तो आपकी पत्नी आपको मानती है, क्योंकि आप चल रहे हो तो दोनों ही ठीक है। अगर पति न चले, पत्नी चले तो भी मुश्किल, और पत्नी चले पति न चले तो भी मुश्किल। लेकिन यहाँ देखो दोनों ही एक तो को देखते 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 वो भी बदल रही है, वो भी बदल रहा, वो भी बदल रहा, वो भी बदल रहा, घर का सारा नक्शा ही चेंज हो गया। हमारे होते होते बाबा सरेंडर हुए, अपना तन मन धन सब लिस्ट बनाई, 8-10 नाम उनके नाम पर सारी मिल्कियत को विल कर दिया, तो बाबा का घर सारा बदल गया। बाबा ने दे दिया, जिस दिन विल हो गया उसी दिन जसोदा मैया अपने घर में ऐसे बैठी है जैसे मेहमान, बहू भी समझते मैं मेहमान हूँ, ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, दस्तखत कर दिया, इसमें हमारा पाई का भी अधिकार नहीं, हमने सब भगवान को दे दिया बस। तब से लेके सबकी बुद्धि फ्री हो गई। उसी घर के अंदर वो जसोदा मैया भी बैठी है, बहू दोनों बैठी है और बेटी बैठी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनका मन उपराम, और हम जो छोटी छोटी कन्याएं बाबा की नई नई बनी, हम समझे ये घर हमारा है, बाबा हमारा, घर हमारा, हम और ही उसमें आ गए। परंतु बाबा की जसोदा में हमने देखा त्याग माना मन से त्याग। राधा ब्रजेंद्रा दादी बहुत बड़े घर की थी पर त्याग माना त्याग, हीरे मोतिया ऐसे छोड़ दिया, बस वंडरफुल कहानियां है उनकी। स्थिति को देखिए तो बहुत वंडरफुल। आज कोई पैसा दान करता है, 100-200 दान करता है तो भी दिखा दिखा के दान करते रहते हैं, संस्कार है शो का। लेकिन उसने हीरा मोती छोड़ दिया, राजा ठाट छोड़ दिया, पर बाबा से जिगरी प्यार हो गया, बाबा को पहचान लिया कि भगवान हमको मिल गया, इसलिए भगवान को पा करके उन्होंने सेकंड में सब छोड़ दिया। उनको लगा ही नहीं कि हमारे पास कुछ हमारा है, सब कुछ दे दिया खत्म। अंत तक मेरे से पूछ लिया जसोदा की क्या स्थिति थी, जो बाबा की धर्म पत्नी मेरे से सब इधर उधर से दिल लगा करके मेरे से मिल करके पूछ लिया जसोदा मैया की क्या स्थिति थी, बेजनरा बाबा की बहू उनकी अंत तक की क्या स्थिति थी, या दूसरी बाबा की बहू थी संतरी उसकी क्या स्थिति थी। मैंने कहा भाई मैंने तो मर जीवा जन्म में सबको देखा, मर गए बस बाप और बच्चे, और कोई नाता ही नहीं देखा, न बहू को लगता है ये मेरा घर है और न बेटे को लगता है ये मेरा घर है, न स्त्री को लगता है मेरा घर है। बाबा बीज रूपी ऐसा टॉप वाला हो गया, ऊपर चला गया, तो घर वालों का नाता रिश्ता बाबा से बदल गया, अलौकिक दिव्य नाता, चलते फिरते दिव्य साक्षात्कार होते थे, वो बड़ी भारी मदद थी। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी होती रही बाबा के द्वारा, नया ज्ञान लगता था, आत्मा को टच करता था ज्ञान, और आत्मा को सुख शांति का अनुभव होता था। दिव्य साक्षात्कार भी घर बैठे हुआ, कोई आता था जाता था, उनको देखते थे इनको देखते, ये क्या हो रहा है, खुशी बहुत, नशा बहुत, और हम कहते पता नहीं ये क्या हो रहा है, अंदर से आवाज आता है अब सत्युग आने वाला है, अब सत्युग, हमको सत्युग में जाना है। घर वाले तकलीफ दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं, हमको एक ही नशा चढ़ा हुआ है, अब हमको सत्युग में जाना है, हमको लक्ष्मी नारायण के राज में जाना है, हमको ये नहीं बनना है। पत्नी सिंध हैदराबाद में, बाबा की धर्म पत्नी नहीं बच्ची, बाबा की बच्ची, पति विलायत से आता है, वो उस नशे से उसको देखता है, विलायत से आया हुआ है, और पत्नी ऐसी सिंपल ड्रेस में, कोई श्रृंगार नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, ये विदेशी आया हुआ है, लोग गए हैं वहां देखने के लिए, उनको लाने के लिए, और ये सिंपल। फिर उनसे बात करती है, तो मैं तो आपके इंतजार में थी कि आप आएंगे, मैं तो लक्ष्मी बन रही हूँ और मेरा ये दृढ़ संकल्प है मैं श्री लक्ष्मी बनूंगी, तो आपको भी सत्युग में ले जाऊंगी, आप श्री नारायण बनेंगे। वो कहे भाषा पता नहीं कौन सी हो गई है, 2 साल मैं छोड़ के गए, 2 साल में ये कैसे बदल गई। ये बदलने वाले ने इनका इतना प्यार, जो बात मत पूछो पति पत्नी का, ये कैसे बदल गई। और मेरे को कहती है मैं लक्ष्मी बनना है, तुम श्री नारायण बनेंगे। अब वो क्या जाने, विदेश का रहने वाला, शराब कबाब पीने वाला, वो कहां समझेगा मैं नारायण बनूंगा। वो कहेगा नारायण कहां मैं कहां। और सच्चाई की मस्ती जो चली हुई थी ना, उसमें उनको एक पता लग गया कि इनों की जीवन में काफी चेंज आ गई है, ये फिर बदलने वाले नहीं है। जिसका फाउंडेशन में ये निश्चय और पवित्रता सबसे पहले नंबर में थी, इसलिए ये ईश्वरी विश्वविद्यालय इतना आगे बढ़ गया, क्योंकि फाउंडेशन में प्यूरिटी फर्स्ट, निश्चय फर्स्ट। इसलिए बाबा को फॉलो सभी ने किया, चाहे कैसी भी स्थिति आई, अत्याचार हुए, विघ्न परे, बहुत कुछ लोगों ने किया, टोने फोने की टोरा फोरा संस्था को, परंतु क्योंकि अविनाशी बाप का साथ साथ था तो कौन तोड़ सकता है, कौन मार सकता है, कौन बाबा को ऐसा कर सकते हैं। स्थापना के कार्य में विघ्न परे, लेकिन बाबा को कभी किसी ने हाथ से पकड़ा नहीं होगा, कभी कुछ किया नहीं होगा। ऐसा चमत्कार लोगों को दिखाई पड़ता था, आया हुआ विघ्न टल जाता था। तो ये ईश्वरी चमत्कारी था, जिसको देख करके हम आपको बताएं। आज समय को देख करके मैंने 60 में जो जरूरी बात थी कि बाबा कैसे कैसे क्या बन गया, भले लौकिक में कितना भी बाबा अच्छा था, हम अपने भेंट में कहेंगे और इंसानों के भेंट में, परंतु मनुष्य से देवता बनने में बाबा को 1 सेकंड लगा। कल वो मनुष्य है, परिवार में मोह है, प्यार है, मुंबई से आते हैं पोतरों के लिए बड़े बड़े बॉक्स लेके आते हैं मिठाइयों के, खिलौने के, और अब बाबा ऐसे आते हैं जैसे कि इस दुनिया में होते हुए नहीं है, न्यारा है बिल्कुल। ये बड़ा भारी परिवर्तन आया। तो हम बच्चे भी एक दो को देखते रहते हैं कि जब ये बाबा का बना, इससे पहले कैसा था, अब ये कैसा बन गया है। तो हम भेंट करते हैं, ये पक्का बाबा का सच्चा बच्चा है, कल वो क्या था और आज ये कैसे क्या बन गया। तो मैं आशा करती हूँ और भी आगे चल करके आप ऐसी बातें सुनेंगे, देखेंगे। बाबा के यज्ञ में ही चमत्कार बहुत है, परंतु समय का प्रभाव है, अभी बदलता जा रहा है, झाड़ बदलता जाता है। बाबा ने कहा आगे चल के बहुत वृद्धि होंगी, बहुत, वो हम अपनी आंखों से देख रहे। अभी ये हाल यहाँ भरा हुआ, वहां जाके देखो फुल हाल भरा हुआ है। अभी तो लोग आ रहे हैं, 3,000 के लगभग और आने वाले हैं, फिर कहाँ बैठेंगे। फिर जरूर हम अपने भाई बहनों को अपने दिल में जगह देंगे। सोने के लिए अभी हमको खटिया मिली हुई है, बहुत लोग आएंगे तो खटियों को छोड़ करके हम धरती पर सोएंगे। जैसा समय आएगा वैसा सलाम तो करना पड़ेगा। दादी ने इशारा सबको दे दिया, हो सकता है खटिया छोड़नी पड़े आप लोगों को। ओम शांति।